प्रसिद्ध धर्म के अधिकारी जिनके माध्यम से आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो नारद मुनि जी का क्या है वो कार्य? केवल एक ही कार्य है, पतितों का उद्धार करना। जैसे आप पढ़ते हो
Thank you।
Paramahansa 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 Shri Srimad Vishwankeshwara Beitar Bhaktiranda Swami Shapra Padmanaj Ki Shri Shri Radha Damodar Ji Ki Iskan Surat Yatra Ki Tazimul Bhakti Shubhishan Mahasan Ki All glory to the Samul Devotees All glory to the Samul Devotees All glory to the Samul Devotees All glory to Shri Guru and Shri Karana आप हिंदी अच्छा पढ़ते हो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 26वां अध्याय श्लोक नंबर 19 बोर्ड में लिखा हुआ है सन सन वायाम वाचा हृदयेना विदुयुयाता प्रेयशः स्नेहा संरम्भा Lingam Atmani Nabhyaga Santvayan Chalaksnaya Vacha Hedayena Viduyata Preya Jahasneya Sambrambha Lingam Atmani Nabhyaga Santvayam Svakrishnaya Vacha Edayena Viduyata Prayashaha Sneha Sambrambha Lingam Atmani Nabhyagha Santvayam Svakrishnaya Vacha Hedayena Viduyata Priyasyaha Sneha Sambrambha Lingam Atmani Nabhyaka
Samsvayan Lakshmanaya Vacha Hedayena Viduyata
That is
पछताते हुए प्रेयस्य अपनी प्रेयसी से
स्नेह प्यासे सरंभ क्रोध का लिंगम लक्षण आत्मने हृदय में न नहीं अभ्यगा उठा। अनुवाद तात्पर्य वचन ऐसे भक्तिदान स्वामी श्री रूपाचार्य द्वारा श्री रूपाद की अनुवाद इस प्रकार है। दुखित हृदय से राजा ने अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहे, यद्यपि वह सुखी दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। तात्पर्य, राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वह अपनी पत्नी को छोड़ अकेले पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल गया था। जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है तो भव सागर के बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 5.5.5 में कहा गया है, पराभवस्था अबोध जातो यावत् जिज्ञासं आत्मतत्वम्। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भक्ति तथा आत्म साक्षात के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप कर्म में लगता है। कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा है। स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। इसी विधि से अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है।
क्या अर्थ है,
प्रंजन का प्रंजन यू नो प्रंजन का अर्थ है जो शरीर का भोगता है और प्रंजनी का अर्थ है कि शरीर को भोगती है। तो एक रूप से देखा जाए भौतिक संसार में हम सब प्रंजन हैं और प्रंजनी हैं। और ये जो कथा आप सुन रहे हो ये हर भौतिकवादी की कथा है। हजारों साल पूर्व एक राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रचीन परिषद और उनके अनेक पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेतर। तो राजा ने बेटों को तो भेजा था तपस्या का पालन करने के लिए और बेटों का सौभाग्य था कि वो देवता शिव जी से मिले और शिव जी ने उन्हें एक मंत्र दिया जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होता है और 10,000 सालों के लिए परिचेतक ने इस मंत्र का उच्चारण किया। आप कहोगे यह कल्पना है, 10,000 साल हो ही नहीं सकता, कौन जी सकता है 10,000 साल। तो ये घटना बीती थी सतयुग में जबकि लोगों की अवधि थी 1,00,000 साल। तो जब प्रचेतर तपस्या का पालन कर रहे थे शिव जी के आदेश के अनुसार, उनके पिता जिनका नाम था महाराज प्रचीना परिषद वो जुड़े हुए थे कर्मकंड कार्यों में। कर्मकंड कार्य का अर्थ है संक्षेप में कि आप अगर यज्ञ भी करते हो तो उसके बदले में आपको कोई उम्मीद चाहिए, कोई लाभ चाहिए। और राजा प्रचीना परिषद एक तरह से कर्मकंड कार्य कर रहे थे और दूसरे तरह से शिकार में जा रहे थे, निर्दोष पशुओं को घायल कर रहे थे। तो नारद मुनि जो हैं वो हैं पूरे समाज के शुभचिंतक। नारद मुनि को शास्त्र में भगवान भी कहा जाता है क्योंकि नारद मुनि जी ब्रह्मा जी जो निर्णय देते हैं वही निर्णय है जो कि शास्त्रों का निर्णय है। और नारद मुनि जी को अनेक महाजनों में एक महाजन भी माना जाता है। स्वयंभू नारदा शंभु कौमर कपिलो मनो बलदो जनको भीष्मो बलिर भाई जैसा केर भया 12 है प्रसिद्ध धर्म के अधिकारी जिनके माध्यम से आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो नारद मुनि जी का क्या है वो कार्य, केवल एक ही कार्य है पतितों का उद्धार करना। जैसे आप पढ़ते हो एक समय एक शिकारी था मृगारी जो जानवरों को घायल करता था तो बड़ा आनंद उठाता था और फिर उन्हें देखता था तड़पते हुए और जब उनकी मृत्यु होती थी तो बड़ा आनंद लेता था। किस प्रकार नारद मुनि जी ने उनका उद्धार किया। तो नारद मुनि जी ने संतों का भी उद्धार किया और पतितों का भी। व्यासदेव जी के गुरु भी नारद मुनि जी ही थे, ध्रुव महाराज के गुरु भी नारद मुनि थे। तो नारद मुनि जी पहुंचे महाराज प्रचीना परिषद के महल में। उन्होंने देखा राजा किस प्रकार भौतिक कार्यों में जुड़ा हुआ है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि जीवन का लक्ष्य कर्म कांड नहीं, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए असली सुख की प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति। नारद मुनि इस चौथे स्कंध में कहते हैं जीवन के ये दो लक्ष्य होने चाहिए। क्या एक पहला क्या था पहला क्या था हा? असली खुशी की प्राप्ति और दूसरा था कष्टों से मुक्ति। तो दो प्रकार रहा कि खुशी है असली है और नकली। भौतिक संसार में जो आप खुशी प्राप्त करते हो, मान लो आप अरबपति बन जाओ अंबानी जैसे या किसी टाटा बिरला जैसे, और मान लो आप बड़े प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार भी बन जाओ, मान लो आप एक प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी भी बन जाओ जहां हजार लाखों लोग आपकी पूजा करते हैं, ये सब पद स्थान आज अगर आपको आनंद दे, क्या हमेशा आनंद दे सकेगा? नहीं, केवल थोड़े समय के लिए। तो भौतिक कार्यों के द्वारा जो खुशी प्राप्त होती है वो अस्थाई है, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदुम स्वर्त गति में विष्णु। लोग ये नहीं जानते थे अति सुख शांति का क्या है साधन। तो नारद मुनि जी ने कहा कि जीवन का लक्ष्य है असली सुख को प्राप्त करना। भौतिक समाज में जो प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है नकली सुख को प्राप्त करने के लिए, पर दुर्भाग्य की बात क्या है कि जब आप ये उपदेश देते हो भौतिकवादियों को, वो विश्वास ही नहीं करते। वो कहते नहीं, जो तुम कह रहे हो नकली सुख है वो असली सुख है, और जो तुम कहते हो असली सुख है वो नकली सुख है कि नहीं? भौतिकवादियों का तो यही विचार है, और शास्त्र पर आधारित ही हम समझ सकते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए असली सुख की प्राप्ति, और दूसरा उन्होंने कहा कि सब कष्टों से छुटकारा, सात प्रकार के क्लेश जैसे आप जानते हो हम सबको भुगतना पड़ता है। आप अरबपति भी बन जाओ, आप बुढ़ापेपन रोग पीड़ा से बच सकते हो? नहीं बच सकते। आप सात प्रकार के कष्टों से नहीं बच सकते, जैसे कि कुछ दो तीन साल पहले एक सुनामी आई थी ना, तो जब सुनामी आई थी तो थाईलैंड का राजा का बेटा तैर रहा था, सुनामी आई खत्म हो गया। वो थोड़ी को राजा का बेटा था तो अपने आप को सुनामी के प्रभाव से बचा सका। तो सात प्रकार के कष्टों से कोई अपने आप को बचा नहीं सकता। पर नारद मुनि जी कहते हैं कि जीवन का नारद मुनि जी कहते हैं जीवन का लक्ष्य होना चाहिए अपने आप को ये सात प्रकार के क्लेशों से मुक्त करना। अब नारद मुनि जी ने सोचा आप मुझे महाराज प्रचीना परिषद का उद्धार करने दो। अभी उद्धार करने के अनेक साधन हैं, वो उनको कह सकते थे ये गलत काम है, ये गलत काम है, ये गलत काम है, उन्होंने ऐसे नहीं किया। नारद मुनि ने कहा हे राजा, मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि राजा ने नारद मुनि का स्वागत करके ये जरूर कहा कि मैं अंधा हूं, तुम मुझे शिक्षा दो। हालांकि राजा कर्म कर्ण कार्य में जुड़ा था, हालांकि वो शिकार कर रहा था, जब भी उनका जब परिचय हुआ नारद मुनि से, उन्होंने उनसे क्या भीख मांगी कि मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। तो नारद मुनि जी ने मार्गदर्शन देना आरंभ किया, पर उन्होंने ये नहीं कहा मैं तुम्हारी कथा सुना रहा हूं। उन्होंने कहा एक राजा था इतिहास में जिसका नाम था पुरंजन। तो जैसे हम कह चुके हैं पुरंजन शब्द का अर्थ क्या है, जो शरीर को भोगता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या प्रयास करते हैं, शरीर को मुख्य भोगता करें, शरीर के द्वारा इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करें। बूढ़ी उम्र में भी आजकल भौतिकवादी विज्ञानी क्या कहते हैं, बुढ़ी उम्र में भी इंद्रिय तृप्ति को मत त्यागो, नहीं तो कहते हैं बीमारियां बढ़ जाएंगी। एक कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी, वो कहते हैं रोज वाइन पीना चाहिए, रोज वाइन पियोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, रोज इतनी शराब पियोगे तो ये नहीं होगा। लोगों का यही भाव है कि किसी के रूप से इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ना चाहिए। तो राजा ने, राजा को नारद मुनि ने एक राजा की कथा सुनाई जिसका नाम है प्रणजन। तो प्रणजन और प्रणजनी उन्हें कहा जाता है जो शरीर का उपयोग करना चाहते हैं इंद्र तृप्ति के कार्यों में। तो इसलिए ये जो कथा है ये एक रूपक कथा है, क्योंकि तो इंग्लिश में कहते हैं एलिगोरिकल स्टोरी। आज जब ये कथा पढ़ते हो तो कई बार आप ऐसे बड़े मीठे शब्द पढ़ते हो कि राजा ने पत्नी के चरण छुए वगैरह, ये है एक रूपक कथा जिसमें नारद मुनि जी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति अंधा होकर अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है। तो आज के श्लोक के तात्पर्य में कई अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार दिया जा रहा है। जो राजा है वो अपनी पत्नी से ये स्वीकार कर रहा है कि मैंने जंगल में जाकर शिकार किया, यह पाप का कार्य था। राजा अब सुधरना चाहता है, वो ये स्वीकार कर रहा है कि मैंने जब जंगल में जाकर शिकार किया ये गलत काम है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे कहते हैं कि आगे जब तक व्यक्ति ये नहीं पहचानेगा कि वो गलत कार्य कर रहा है वो कभी सुधर नहीं पाएगा। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में भी जब प्रवेश करते हो साधु संगत के प्रभाव में आकर, तो जैसे आप साधु संगत प्राप्त करते हो आप ये समझ पाते हो कि जो जीवन में बिता रहा था ये पाप का जीवन है और मुझे इस पाप के जीवन से मुक्त होना चाहिए। और ये जागृति कैसे उत्पन्न होती है? साधु संगत के माध्यम से। प्रभुपाद जी ने समझाया है अनेक ग्रंथों में कि साधु संगत जिसके द्वारा हमारा उद्धार आरंभ होता है ये हमें प्राप्त होता है दो रूपों से। एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। जैसे कि आप सारे भक्त इस समय जुड़े हुए हो ग्रंथों के वितरण की सेवा में, क्यों? क्योंकि ग्रंथ भागवत की संगत से लोगों के हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हो सकती है और कोई कारण नहीं है। ये नहीं कि इसमें कोई आर्थिक नफा है, उल्टा नुकसान ही है, पर ग्रंथ भागवत के संगत से, ग्रंथ भागवत के अध्ययन से हमारे हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। प्रभुपाद जी कहते थे दीज बुक्स आर टाइम बॉम्ब, मतलब कि आजकल उग्रवादी लोग बॉम्ब रखते हैं तो उसमें टाइमर भी होता है, एक घंटे में बॉम्ब फूटेगा। तो ये जो ग्रंथ है ये टाइम बॉम्ब है, किसी वक्त भी फूट सकते हैं। वैसे तो भौतिक बॉम्ब जब फूटता है तो हर एक चीज आगे पीछे नष्ट हो जाती है, तो ये बॉम्ब जब फूटता है तो क्या नष्ट होता है? हमारे भौतिक विचार, हमारे भौतिक इच्छाएं, हमारे भौतिक उद्देश्य। हम समझ पाते हैं क्या असली है, क्या नकली है, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या प्रतिकूल है, क्या अनुकूल है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने से पहले हमें ये तो स्वीकार करना चाहिए कि हम गलती करते आ रहे हैं। आप यही नहीं स्वीकार करोगे आप गलती कर जा रहे हो तो आप सुधरोगे कैसे। कई बार आप देखते हो कि व्यक्ति भक्त बन भी जाते हैं, दीक्षित भी हो जाते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि हम गलती कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में। और क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हम गलती कर रहे हैं, ऐसे भक्त कभी सुधरते नहीं, वहां के वहां रहते हैं पूरी जिंदगी। तो हमें सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन में ये तो स्वीकार करना चाहिए कि हम एक गलती कर रहे हैं और अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में नलकवर और मणिग्रीवा की कथा पढ़ते हो। ये दो कौन थे? कुबेर के पुत्र। कुबेर कौन है? कौन है? देवताओं का खजांची है। केवल खजांची नहीं, देवताओं का खजाना उनके हाथ में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने धनी होंगे, क्योंकि देवताओं के जो महल हैं वो सोने के बने हुए हैं। यहाँ तो महल बनाते हो ईंट के और केवल हम सोने की गोल्ड ईंट की लाइनिंग लगा देते हैं जहाँ सोने का रूप देने के लिए, है ना। पर देवताओं के महल ईंट की वजह सोने के बने हुए हैं, पूरा महल सजा हुआ रहता है, तो उनके खजांची है। तो कुबेर मैं दो पुत्र कुबेर के नंदकुमार मणिग्रीवा शराब के नशे में थे, स्त्रियों की संगत में स्नान कर रहे थे। और जब महापुरुष नारद मुनि जी वहां से निकले तो इतने नशे में थे कि उन्होंने अपने नंगे शरीर को ढका नहीं। हालांकि वो औरतों ने ढक लिया था पर इन्होंने ढका नहीं। तो नारद मुनि जी ने सोचा मुझे इनका उद्धार करने दो। संत जो है अगर श्राप देता भी है ताकि भलाई के लिए, ये हम समझ नहीं पाते। हमें आध्यात्मिक जीवन में ये समझना चाहिए कि अगर हमें कोई डांटे भी तो वह हमारी भलाई के लिए है। अगर तो हमें उसको बुरा नहीं माना जाए। तो नारद मुनि जी ने इन दो कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया। क्या था श्राप? कि आप पेड़ जब बन जाओगे, पर कहां? सूरत की गलियों में, लंदन की गलियों में नहीं, नंद महाराज के आंगन में। तो आपके जैसे ये सूरत का केंद्र है, यहां अनेक वृक्ष भी हैं, तो सारे वृक्ष बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें हरि नाम तो सुनने को मिलता है और शायद कईयों को दर्शन भी मिल रहा हो राधा दामोदर का, पता नहीं, देखना पड़ेगा। जैसे वृंदावन मंदिर में, हमारे वृंदावन मंदिर के आंगन में तमाल का पेड़ है, तो वो पेड़ अत्यंत भाग्यशाली है। क्यों? सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन लेता है। आप तो 5 मिनट दर्शन लेते हो फिर भागने की सोचते हो, वो आप एक आरती में जाते हो तो सोचते हैं आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। वो पेड़ सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन ले रहा है, सारा दिन हर आरती में उपस्थित रहता है और सारा दिन इंद्र प्रभु का कीर्तन सुनता है, तो अत्यंत भाग्यशाली है। तो इसी प्रकार जो पेड़ है आपके इस शरीर के आंगन में और शरीर इस कंपाउंड में, ये भी बड़े भाग्यशाली है। आप लोग जब हरि नाम में जाते हो तो ना ही मानव यूनिट का लाभ उठाते हैं, पर जो चीटियां हैं, पेड़ हैं, सब में चेतना है। केवल अंतर यह है कि पेड़ों में बहुत छोटी मात्रा की चेतना है, पर चेतना उनमें भी है। तो नारद मुनि जी ने उन्हें श्राप दिया कि आप वृक्ष का रूप धारण करोगे, और कहा नंद महाराज के आंगन में, वहां शायद आप बुरा नहीं मानो पेड़ बन रहे ना। अगर आपको सौभाग्य हो कि नंद महाराज के आंगन में आपको पेड़ बनोगे, बुरा मानोगे आप? पर साथ में उन्होंने एक वर भी दिया, और ये था कि देवताओं के 100 वर्षों के बाद उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटों के बराबर बनते हैं, तो उनको वर दिया कि 100 वर्षों के बाद आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये 2 पुत्र पेड़ बन गए थे, और उनका उद्धार कैसे हुआ, भगवान के उखल 2 पेड़ों के बीच में फंस गए थे, भगवान को याद था मेरे भक्त ने ये वर दिया है कि इन 2 को मेरा दर्शन प्राप्त होगा। भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते, जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को अनेक वर दिए थे। हिरण्यकश्यपु की योजना थी कि वो सनातन सदा अमर रहे, तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ेगा, तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा, बड़े होशियार है और अनेक प्रकार के वर प्राप्त कर लिए, है ना, क्या ना मेरी मृत्यु होगी आकाश में, ना पृथ्वी में, ना सागर में, ना किसी मनुष्य के द्वारा, ना किसी पशु के द्वारा, ना किसी हथियार के द्वारा, ना किसी बीमारी के द्वारा, ना किसी के चाकू के द्वारा, हर प्रकार का वर प्राप्त कर रहे। तो जब हिरण्यकश्यपु इतने अपराधी बन गए थे, और जब वो तैयार थे अपने पुत्रों का नष्ट करने के लिए, तो भगवान के पास कोई उपाय नहीं था पर उनका वध करने का। भगवान ने उनका वध कैसे किया, ब्रह्मा जी के सब वरों का पालन करते हुए अपनी गोद में। जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया था, तो बाद में भगवान ने ब्रह्मा से क्या कहा, उन्होंने कहा भविष्य में ऐसा वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत मुश्किल बना दिया था, क्योंकि उन्होंने इतने वर दिए कि भगवान को सोचना पड़ा कि अब कैसे ब्रह्मा जी के सब वरों का पालन करते हुए हिरण्यकश्यपु का वध हो। तो भगवान अपने भक्तों के वर का पालन करते हैं, वचनों का पालन करते हैं। तो भगवान को पता था कि नारद मुनि जी ने इन 2 के उद्धार के लिए ये वर दिया है कि उन्हें देवता के 100 सालों के बाद मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो ज्या के 2 पेड़ों से 2 पुत्र निकले, नल करोड़ और मणिग्रीव निकले, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हम आज आपका दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं महान संत नारद मुनि जी की कृपा से। और फिर उन्होंने कहा अब से हम वो गलती नहीं करेंगे जो पहले कर बैठे हैं, अब से हमारे नेत्र सदा आपका और आपके भक्तों का चेहरा देखेंगे, हमारे पैर सदा आपके मंदिर में चल के जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अब से हम इन मन इंद्रियों बुद्धि का उपयोग करेंगे किस लिए, आपकी सेवा में। तो हम जब ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत के संपर्क में आते हैं, तो उनके संपर्क में आने से हम पहचान पाते हैं क्या कमियां हैं हमारे जीवन में और क्या चीजों को हमें सुधारना है। अगर हम ये नहीं समझें तो आध्यात्मिक परिवर्तन असंभव है। कई बार भक्तों में विचार आ जाता है मुझे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मुझे कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे वक्त कभी आगे नहीं बढ़ते। आप भगवत में देखते हो आजमिल की कथा, आजमिल का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, फिर आजमिल गिर गए थे बुरी संगत में, और बुरी संगत में गिरकर हर प्रकार के पाप के कार्यों में जुड़ गए थे। और जब यामराज जी ने देखा कि आजमिल इतना पापी बन गया है, तो उन्होंने 3 भयंकर रूपी यामदूतों को भेजा आजमिल को नरक मिलाने के लिए, सजा भुगतने के लिए। 3 क्यों, क्योंकि हम अगर पाप का कार्य करते हैं या भक्ति का कार्य, इसके तीन साधन है। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है ध्येय। आप ध्येय का उपयोग करोगे, सदुपयोग करोगे, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे। ध्येय का दुरुपयोग करोगे तो नरक के प्रति आगे बढ़ोगे। इसी प्रकार मन, मन का सदुपयोग करोगे तो भगवान का चिंतन करोगे, मन का दुरुपयोग करोगे तो भौतिक विषयों का स्मरण करोगे। और बुद्धि, बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो देखोगे चारों तरफ क्लेश है, कैसे मैं क्लेशों से निकलो। और बुद्धि का जब दुरुपयोग किया जाता है तो हम यही सोचते हैं कैसे हम चापलूसी करें, कैसे कुछ गंदा काम करें, है ना। आज लोग क्या गंदा काम नहीं कर रहे पैसा कमाने के लिए। तो जैसे कि नारद मुनि जी प्रथम स्कंद में उदाहरण देते हैं, कहते हैं वो ही कार्य जो आपके बंधन का कारण बनता है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसे कि दूध के द्वारा आपका पेट खराब हो जाता है, और जब आप इसी दूध को दही के रूप में उपयोग करते हो तो खराब पेट को ठीक कर देता है। इस समय हम इस माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हैं, किस लिए? भगवान का संदेश देने के लिए। आप लोग जो गीता बांट रहे हो, जिस कागज में वो छपती है, वो कागज हम तो मिल वालों से वैसे ही खरीदते हैं जैसे दूसरे लोग खरीदते हैं। हम जहां गीता छापते हैं उन प्रेसों में दूसरी किताबें भी छप रही हैं। तो अंतर क्या है? हम इस कागज में छाप रहे हैं भगवान का संदेश, और दूसरे व्यक्ति इन कागजों में क्या छाप रहे हैं? पोर्नोग्राफी और गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी कथाएं। ये कागज भी जो छपता है, कागज भी जो बनता है, कैसे बनता है? पल्प से। पल्प कहां से निकलती है? पेड़ों से। और ये कागज बनाने के लिए इन्हें लाखों पेड़ों को रोज काटना पड़ता है। तो देखा जाए ध्यान से, ये भी महापाप है कि आप पेड़ को काट रहे हो, मार रहे हो और उससे कागज बनाते हो, जिसमें क्या छापते हो? गंदी नंगी तस्वीरें, गंदी चीजें जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं, तो वो भी एक महापाप है। तो आज मेल बुरी संगत में गिर गए थे, और यमराज जी ने भेजा तीन यमदूतों को उन्हें नरक में लाने का। जैसे ही आजमील ने इन यमदूतों को देखा, आप यमदूतों का चेहरा देखोगे तो घबरा जाओगे। काला शरीर, ऊपर तेल से तेल लगा हुआ, बड़े बड़े नाखून, दांत बाहर आते हैं। जैसे आप जब स्कूल में थे, आपने शायद कोई फोटो देखी होगी भूतों की, तो भूतों से भी ज्यादा भयंकर है उनका चेहरा। तो जैसे आजमील ने इन यमदूतों को देखा, वो घबराकर चिल्ला उठे नारायण। जैसे उन्हें नारायण के नाम को पुकारा, उन्होंने पुकारा था अपने सबसे छोटे बेटे का नाम, पर क्योंकि भगवान के नामों में उन्हें अंतर नहीं, भगवान विष्णु के प्रतिनिधि वहां उपस्थित हो गए जिनका नाम था विष्णु दूता। तो आज में लगभग बेहोश हो गया था यम दूतों के चेहरे को देखकर, और ये देव बन करना चाहे तो यम दूतों को देखकर लगभग बेहोश हो गया था। फिर यम दूतों का और विष्णु दूतों का वर्तलाप हुआ, जिसमें यम विष्णु दूतों ने कहा कि हालांकि ये आजमेल बुरी संगत में गिर गया था, हर प्रकार का अत्याचार किया, ये आजमेल निर्दोष होते हुए भगवान की निर्दोष भावना से भगवान के नामों का उच्चारण भी कर रहा था, अपने छोटे पुत्र का नारायण का नाम लेते हुए। तो आजमेल ने जब ये कथा वर्तलाप सुना, वो समझ पाए कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की, अपनी पत्नी माँ बाप वेद ब्राह्मण को संस्कृति को त्यागा और एक वैश्य की संगत में रहकर मैं पापी बन गया। फिर आजीविल के मन में पछतावा उत्पन्न हुआ, क्या मुझे पछताना चाहिए इस अपराध के लिए। और फिर आजीविल गए हरिद्वार में जहाँ की हरि का नाम लिया उन्होंने हजारों सालों के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है ये स्वीकार करना कि हम पाप के कार्य में जुड़ते आए हैं, अब हमें सुधरना है। जब तक आप ये नहीं स्वीकार करो कि आप पाप के कार्य करते आए, आप कैसे सुधरोगे, है कि नहीं। उसी प्रकार कई बार हम थोड़ा सुधर जाते हैं, पूरा नहीं, जब भी हमें शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा है, दादी प्रतिगणादि भूय मकति प्रचति बुनकते बुजते चाय व सदविधि प्रति लक्ष्य नाम। रूप गोस्वामी जी कहते हैं उपदेशन में नाम के ग्रंथ में कि भक्तों के बीच में छह प्रकार के संबंध होने चाहिए, जिनमें एक क्या है, रिवील योर माइंड, जो मन में शंकाएं हैं उनका उपाय, उनका उत्तर प्राप्त करो। आप भागवत में क्या देखते हो, अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं विदुरा परीक्षित महाराज, अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे भगवत गीता में और भगवान ने उत्तर दिया। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान के शरणागत होना, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो भी त्याग करना पड़े हमें त्याग रहना चाहिए। रूपक गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए जो कीमत भी तुम्हें भरनी पड़े भरो, खंजूसी मत करो, सौदा मत करो। वैसे व्यापार में आप लोग सौदा करते हो, खंजूसी करते हो, और आध्यात्मिक जीवन में भी कई बार हम सौदा करना चाहते हैं, हम सेवा करेंगे पर इसके बदले में हमको यही चाहिए, सेवा करेंगे पर इसके बदले में हमको इतनी छूट चाहिए। ये इसे कहता है, कहा जाता है साकाम भक्ति। साकाम भक्ति मतलब कि आप भक्ति कर रहे हो, दीक्षित भी हो, पर हर कदम में आप ये देख रहे हो मेरा क्या स्वार्थ है, मेरा क्या लाभ है, मेरे लिए क्या है, यह है साकाम भक्ति। तो चैतन्य चरितमृत में कहा गया है साकाम भक्ति के द्वारा आप कभी भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते, न ही शुद्ध शांति प्राप्त कर सकते हो। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। केवल अगर आप निष्काम भाव से जुड़ोगे, जैसे भगवत गीता के सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं चार परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं, क्या है चार श्रेणी के व्यक्ति, एक जिसको धन चाहिए, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा रोगी पीड़ित, चौथा ज्ञान पर आधारित। तो ये जो पहले तीन श्रेणी के हैं ये है, ये है साकाम भक्त। मुझे धन चाहिए तो मैं भगवान के पास जाता हूं, भगवान की सेवा करता हूं। मैं रोगी पीड़ित हूं तो मैं रोग पीड़ा को दूर करना चाहता हूं, तो मैं साकाम, मैं मतलब से आया हूं। और चौथे श्रेणी का कौन है, जो ज्ञान पर आधारित, जो जानता है सर्वाधर्म पर जवाम एकम शरणम हम तो हम सर्वे पापे में मोक्ष स्वामी मां से चाहा, ये उसने ज्ञान प्राप्त किया है और वो कहता है मैंने भगवान की शरण स्वीकार करनी है हर परिस्थिति में। तो भगवान क्या कहते हैं, ये चारों पुण्यात्मा हैं पर इन चारों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो कि ज्ञान पर आधारित मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं सातवें अध्याय में। तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम भौतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए क्या कि हम ये गलती करते आ रहे हैं, तो ही सुधरने की गुंजाइश है। अगर हम सोचें कई हम गलती कर रहे नहीं तो हम गुंजाइश कहां है सुधरने की, कोई गुंजाइश नहीं है। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, When a person loses his Krishna consciousness, becomes क्या व्यक्ति कृष्ण भक्ति को खोता है और जब व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार के लक्ष्य को भूल जाता है तो फिर वो पाप के कार्यों में जोड़ता है। जैसे कि कहा जाता है, कृष्ण सूर्य समा माया हाय अंधिकारा, यहाँ कृष्ण साहिनी माया अधिकारा। जहां कृष्ण है वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे कि जहां सूर्य है वहां अंधेरापन महसूस नहीं होता। तो जब हम कृष्ण भक्ति को त्यागते हैं तो फिर क्या है उपाय, पाप के कार्य में जुड़े। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति के सारे कार्यों का उपयोग होना चाहिए कृष्ण भक्ति में। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आता है वो पहचानता है कि मैंने इतना समय का दुरुपयोग किया है भगवान की माया की सेवा में, अब मुझे हर पल हर क्षण का उपयोग करने दो। किस लिए? भगवान की सेवा में। आयुष के शाना एक पीना लबया स्वर्ण कोती भी। चिन्ना के पंडित जी ने कहा है कि अगर आप एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकते। तो भक्तों का क्या भाव है? भक्तों का भाव यह रहना चाहिए कि मैं अनादि काल से भगवान को भूलते आ रहा हूं, अनादि काल से मैं योजना बना रहा हूं भौतिक सुख प्राप्ति की, अब मुझे एक जीवन को समर्पण करने दो भगवान की सेवा में। और इस भाव के साथ हमें चलना चाहिए। और अगर इस भाव के साथ चलोगे फिर आपका ये विचार भी रहेगा कि हमें एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हर समय का उपयोग करना चाहिए। किस लिए? भगवान की सेवा में। तो यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आता है उसे कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि किस प्रकार उसका जीवन था व्यर्थ था। और इस भावना से अगर आएगा तो वह हर कदम में ये चाहेगा कि मैं भगवान की सेवा करूं। जैसे एक प्रसिद्ध भक्त नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भाजिया जानिया शून्या पीशा खाई दो। मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मैं जान बुझ कर जहर पी रहा था। तो ये जो पुरंजन की कथा पढ़ रहे हो, ये पुरंजन की कथा समझने के लिए कई बार जो अगर केवल अनुवाद को पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको बड़े ध्यान से इन श्लोकों का तात्पर्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि राजा जब ऐसे कहता है तो उसका क्या अर्थ है। और ये पुरंजन की कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। और संदेश यह है कि शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही आप असली संतुष्टता प्राप्त कर सकते हो। अगर समाज में किसी विषय की कमी है तो शुद्ध भक्ति के ज्ञान की कमी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।